आर्यांश ने दीवा को अपने ऑफिस बुलाया था क्योंकि वो उसे एक पार्टी में लेकर जाना चाहता था। दीवा ने उसे पार्टी में जाने से मना कर दिया था क्योंकि उसे डर था कि अगर गलती से भी वो मीडिया के सामने आ गई तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आर्यांश दीवा को ले जाना चाहता था, इसीलिए उसने रॉयल पार्टी को मैस्केरेड पार्टी में बदल दिया था। हालांकि दीवा ने हाँ कह दिया था, लेकिन मन ही मन वो यही प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसे वहाँ गलती से भी ना पहचान ले। पार्टी में जाने के लिए तैयार भी होना था, इसीलिए आर्यांश ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। आर्यांश ने दीवा को कमर से पकड़कर उठाया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन से बाहर लेकर आया। उसके सभी एम्प्लॉयज ने उन्हें देखकर अपनी नज़रें नीचे कर ली थीं। वैसे भी उन्हें हिदायत दी गई थी कि वे कभी अपने बॉस की पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोशिश ना करें। आर्यांश दीवा को लेकर लिफ्ट के पास पहुंचा, जहां बिल्कुल सन्नाटा था। यहां इतनी शांति क्यों है आर्यांश, और कोई लिफ्ट के आसपास क्यों नहीं है? दीवा ने हल्का हैरानी जताते हुए पूछा। क्योंकि ये मेरी प्राइवेट लिफ्ट है, मेरे अलावा इसमें कोई और यूज नहीं कर सकता है, आर्यांश ने जवाब दिया और उसे लिफ्ट के अंदर खींच लिया। हाँ, हॉस्पिटल में भी हम डॉक्टर्स के लिए भी अलग लिफ्ट होती है, फिर ये तो इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ की बात है, दीवा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। फिर वो कुछ पल रुककर बोली, अच्छा आर्यांश, हम कहाँ जा रहे हैं? दीवा इस हाल में तो पार्टी में बिल्कुल नहीं जा सकती थी। उसने नॉर्मल बैगी पैंट्स और ऊपर लूज क्रॉप टी शर्ट पहनी हुई थी। पार्टी में जाना है तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, खासकर तुम्हारे लिए। तुम बहुत एवरेज दिखती हो, ऊपर से तुम्हारा फिगर भी कुछ खास नहीं है, जो लोगों को लगे कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ। अब मेरे साथ जाना है तो खुद को थोड़ा तो अपडेट करना पड़ेगा ना, आर्यांश ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसने आज तक दीवा से ये नहीं कहा था कि वो दिखने में खूबसूरत लगती है। दीवा को अब उसकी इस कड़वाहट को झेलने की आदत पड़ गई थी। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, आपकी इस तारीफ के लिए शुक्रिया मिस्टर कपूर। अंदर ही अंदर उसे आर्यांश पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद को काफी काबू में रखा। आर्यांश ने उसे देखकर सार्कास्टिक स्माइल दी। वो उसकी बुराई कर रहा था, फिर भी वो उसे थैंक्स कह रही थी। आर्यांश ने सिर हिलाकर कहा, लेकिन मैंने तुम्हारी तारीफ कब की जो तुम मुझे थैंक्स कह रही हो? आपने मुझे एवरेज कहा ना, कम से कम ये तो नहीं कहा कि मैं दिखने में बदसूरत लगती हूँ, दीवा ने जवाब दिया। हालांकि दीवा दिखने में पतली थी, लेकिन उसकी बॉडी अट्रैक्टिव थी। दीवा की इस मासूमियत पर आर्यांश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो मन ही मन बोला, ये लड़की सचमुच बहुत प्यारी है। कुछ ही देर में आर्यांश उसे लेकर मुंबई के सबसे फेमस डिजाइनर के बुटीक पहुंच गया। आर्यांश के वहां आते ही सभी उसे ग्रीट करने लगे। दीवा ने अपने आसपास देखा और फिर बहुत धीमी आवाज में आर्यांश से कहा, आर्यांश यहाँ से चलते हैं ना, ये जगह बहुत महंगी लग रही है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पे मैं करूंगा, आर्यांश ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। दीवा ने गहरी सांस ली। वो पहले ही जानती थी कि आर्यांश की करेगा, तभी उसे ज्यादा असहज महसूस हो रहा था। वो उसका ज्यादा खर्चा नहीं करवाना चाहती थी। दीवा ने आर्यांश को तंग करने के लिए कहा, ठीक है तो फिर ऐसा करती हूँ कि सबसे महंगी ड्रेस खरीद लेती हूँ, पूरा बुटीक भी खरीद लोगी तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, आर्यांश ने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा। दीवा हल्के से मुस्कुरा दी। आर्यांश ने काफी समय बाद उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था, तो वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। इसी बीच बुटीक की मैनेजर वहां आई। गुड आफ्टरनून मिस्टर कपूर, ये कौन है? उसने आर्यांश के सामने सिर झुकाकर पूछा। मेरी गर्लफ्रेंड, आर्यांश ने दीवा को अपने करीब करते हुए जवाब दिया, मानो अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके और दीवा के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। दीवा भी हैरान रह गई। आर्यांश ने सबके सामने पहली बार उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। उसके शब्द दीवा के दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। दिखने में बहुत अच्छी हैं और फिगर भी खूबसूरत है, मैं उनके लिए बेस्ट कलेक्शन दिखाती हूँ जो अभी लॉन्च हुआ है, मैनेजर ने कहा और फिर अपने पीछे आने का इशारा किया। आर्यांश ने दीवा को उसके साथ भेज दिया। वहां पर दीवा तैयार होने वाली थी। उसने अपने लिए ब्लैक कलर की ड्रेस चुनी जो स्लीवलेस थी। आगे और पीछे से उसका नेक काफी लो था। नीचे ये एक इवनिंग गाउन था जिस पर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई थी। दीवा उसे पहनकर तैयार हो गई थी और मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवा रही थी। उसके बालों को नीचे मैसी बन में सेट किया गया था और आगे से कुछ बाल खुले छोड़ दिए गए थे। कानों में डायमंड स्टड्स पहनने के बाद दीवा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे तारीफ करते हुए मैनेजर ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये ड्रेस आपके लिए ही बनाई गई हो। दीवा बस मुस्कुरा कर रह गई। वो बाहर निकली तो आर्यांश पहले से ही तैयार था। उसने अपने लिए ब्लैक कलर का सूट चुना था जो दीवा की ड्रेस के साथ मैच करता था। दीवा आर्यांश के पास आई और एक्साइटेड होकर पूछा, आर्यांश मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक ही लग रही हो, आर्यांश ने अपनी आदत के मुताबिक रूखा सा जवाब दिया। दीवा के लिए ये तारीफ भी काफी थी। फिर वे दोनों साथ में आईने के सामने खड़े हुए। दीवा को खुद को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी खूबसूरत भी लग सकती है। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रही हो, एक हाई क्लास सोसाइटी की लड़की जो हर समय ऐसी ब्रांडेड चीजों को यूज करती हो। दीवा ने फिर आर्यांश की तरफ देखकर कहा, आर्यांश तुम अच्छे लग रहे हो। ये क्या बेकार सा कॉम्प्लीमेंट हुआ, सीधे सीधे कहो ना, हॉट लग रहा हूँ, हैंडसम या हैपनिंग लग रहा हूँ? आर्यांश ने मुंह बनाकर कहा तो दीवा हल्के से मुस्कुरा दी। आर्यांश ने दीवा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। वे दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन तभी दीवा की नजर अपने हाथ की तरफ गई। वो कितनी भी खूबसूरत लगे, लेकिन उसके हाथ की पट्टी बहुत अजीब लग रही थी। उसे दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसका जख्म अभी भी ठीक नहीं हुआ था। दीवा की आंखों में उतरे दर्द को आर्यांश ने पढ़ लिया। वो अचानक उसके पीछे आया और उसे खुद से सटा लिया। उसने दीवा की पट्टी को अपने हाथ से ढकते हुए कहा, सुनो दीवा, आगे से तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी। आर्यांश की आवाज में उसके लिए फिक्र थी। वो उसे कितना भी नफरत करने की कोशिश कर ले, लेकिन जब उस रात दीवा ने अपनी कलाई काटी थी, तब उसे समझ आ गया था कि वो उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। वहीं दीवा को तैयार करते वक्त मैनेजर ने उसकी हाथ की चोट को देख लिया था। वो दीवा के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आई और उसे दीवा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मिस गोयनका, इसे ट्राई कीजिए। दीवा ने उस ब्रेसलेट को पहना। वो उसकी ड्रेस को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था और साथ ही उसकी चोट भी छिप गई थी। दीवा ने उसे थैंक्स कहा और फिर आर्यांश के साथ गाड़ी में आ गई। गाड़ी में बैठते ही दीवा बोली, आर्यांश, मुझे बहुत भूख लग रही है, हम पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ कुछ खा लेना। आर्यांश ने कहा, क्या वहाँ बहुत सारा अच्छा खाना होगा? अचानक दीवा के मुंह से निकला, ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे तुमने जन्मों से खाना नहीं खाया हो। दोपहर को लंच भी किया था और उसके बाद वो जेली पुडिंग भी खाई थी, ऐसे क्या तुम्हें पूरा दिन खाना खाने की जरूरत पड़ती है? आर्यांश ने उसे छेड़ते हुए कहा। दोपहर को दीवा ने आर्यांश की पोस्ट देखी थी तो वो बहुत परेशान हो गई थी और उसने कुछ नहीं खाया था। जेली पुडिंग भी उसने सुमन का ध्यान भटकाने के लिए खाई थी ताकि वो उसके आंसुओं को ना देख सके। मैंने लंच नहीं किया था और जेली पुडिंग भी थोड़ा सा खाया था, दीवा ने मुंह बनाकर कहा। अचानक आर्यांश के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने तुरंत कहा, तुमने दोपहर को लंच क्यों नहीं किया था और सुमन माँ उस वक्त क्या कर रही थी? उन्हें तुम्हारा ध्यान रखने के लिए रखा गया है। अरे नहीं, उनकी कोई गलती नहीं थी, मुझे ही भूख नहीं लगी थी, दीवा ने तुरंत जवाब दिया ताकि आर्यांश सुमन पर गुस्सा न करे।
आर्यांश ने आगे कुछ नहीं कहा, तुरंत ही वे पार्टी में पहुंच गए। अंदर जाने से पहले आर्यांश ने दीवा का हाथ पकड़ा। उसने महसूस किया कि दीवा कांप रही थी। ये एक बहुत बड़ी पार्टी थी और दीवा को इस तरह की जगह पर जाने की आदत बिल्कुल नहीं थी। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आर्यांश ने मुस्कुराकर कहा और फिर दीवा की तरफ एक मास्क बढ़ा दिया। इस मैस्क्यूरेट पार्टी में आर्यांश का मास्क सबसे ज्यादा रॉयल और अलग लग रहा था। जैसे ही वे वेन्यू के अंदर पहुंचे, दीवा वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। अब उसे समझ आ रहा था कि इसे रॉयल पार्टी का नाम क्यों दिया गया था। ये पार्टी वाकई बहुत शानदार थी। ये पार्टी हमेशा दो तीन बिजनेस फैमिली मिलकर होस्ट करती थीं, जिनमें कपूर फैमिली भी थी। आर्यांश के मॉम डैड रिटायरमेंट के बाद इस तरह की पार्टीज में नहीं आते थे और आर्यांश भी बहुत कम ही जाता था। जैसे ही वे पार्टी के अंदर दाखिल हुए, सबको पता था कि वो आर्यांश कपूर है। दीवा को घबराहट होने लगी कि कहीं कोई उसे देखकर पहचान ना ले। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि आर्यांश कपूर अपने साथ पार्टी में किसे लेकर आया है। आर्यांश के दोस्त श्रेष्ठ ने उसे देखा तो वो अपनी बहन वर्तिका से बोला, ये आर्यांश किसके साथ आया है? वो अकेला ही आया था। हालांकि वो इंगेज था, लेकिन उसकी सगाई किसी बिजनेस डील की तरह थी, इसलिए वो अपनी मंगेतर श्रेया के साथ जाना पसंद नहीं करता था। तुम खुद जाकर क्यों नहीं पूछ लेते, वो तुम्हारा भी तो दोस्त है, वर्तिका ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। वर्तिका जानती थी कि आर्यांश वहां दीवा के साथ आया है और वो खुश भी थी क्योंकि आर्यांश दीवा में दिलचस्पी ले रहा था। श्रेष्ठ ने सिर हिलाया और जवाब में कहा, इसने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये किसी लड़की के साथ आ रहा है? अगर पहले पता होता तो मैं भी अकेला नहीं आता। मुझे तो ये लड़की सिर्फ और सिर्फ एक गड़बड़ नजर आ रही है। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वर्तिका ने उसे डांटते हुए कहा। वर्तिका को आर्यांश के आसपास घूमने वाली लड़कियां कम ही पसंद थीं, खासकर कियाना से तो उसे सख्त चिढ़ थी। आर्यांश के साथ मौजूद लड़की की तारीफ वर्तिका के मुंह से सुनकर श्रेष्ठ ने चौंकते हुए कहा, तुम इसकी तारीफ कर रही हो? क्या तुम इसे पहले से जानती हो? हाँ, हम दोनों का एक खास रिश्ता है, वर्तिका ने मुस्कुराकर भौहें चढ़ाते हुए कहा। फिर बताओ, उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इतनी जरूरी बात मुझसे छिपाकर कैसे रख सकता है? साफ पता चल रहा है, मास्क के पीछे एक बहुत खूबसूरत चेहरा है, श्रेष्ठ ने थोड़ा उत्साहित होकर पूछा। तुम्हें इतना ही इंटरेस्ट आ रहा है तो बोला ना, जाकर खुद पूछ लो, तुम्हें जलन क्यों हो रही है? तुम खुद भी तो पहले से एंगेज्ड हो, वर्तिका ने उसे घूरते हुए कहा और फिर श्रेष्ठ को वहीं छोड़कर दीवा और आर्यांश की तरफ बढ़ने लगी। पार्टी में सब लोग भले ही दीवा के बारे में जानने को उत्सुक थे, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन एक शख्स ऐसा मौजूद था जिसने उन्हें साथ में देखा तो वो दीवा को तुरंत पहचान गया। ये उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था कि आर्यांश कपूर के साथ दीवा वहां क्या कर रही थी। क्या लगता है, कौन होगा जिसने दीवा को पहचान लिया? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।